ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಜಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಯ ದ್ವೈತ ಚಂದ್ರ ಜಯ ಗೌರಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಏ ಮತ ಶಚಿ ದೇವಿ ವತ್ಸಲ ವಿಹಲ ಹರ್ಷ ಭಯ ದನ್ಯ ಭಾವೆ ಹೈಲ ವಿಕಲ ಏ ಮತ ಶಚಿ ದೇವಿ ವತ್ಸಲ ವಿಹಲ ಹರ್ಷ ಭಯ ದನ್ಯ ಭಾವೆ ಹೈಲ ವಿಕಲ. ಏ ಮತ ಶಚಿ ದೇವಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ವಿಹಲ ಹರ್ಷ ಭಯ ದನ್ಯ ಭಾವೆ ಹೈಲ ವಿಕಲ. ಬೋಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇ ಇಸ್ ತರಹ ಜಬ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸೆ ಶಚಿ ಮಾತಾ ಅಭಿಭೂತ ಹೋ ಗಯಿ ತಬ್ ವೆ ಹರ್ಷ ಭಯ ತಥಾ ದೀನತಾ ಸೆ ವಿಹಲ್ ಸಾಥ್ ಹಿ ಶಾರೀರಿಕ ಲಕ್ಷಣೋ ಸೆ ಯುಕ್ತ ಹೋ ಗಯಿ. ಯೇ ಜೋ ಹೈ ಅಬ್ ಶಚಿ ಮಾತಾ ಕಾ ಪ್ರವೇಶ ಕಹಾಂ ಸೆ ಹುವಾ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಅಭಿ ತೋ ಬಾತ್ ಚಲ್ ರಹಿ ಥಿ ಕುಛ ದಿನ ಪಹಲೆ ಕಿ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯ ಕೆ ಜೀ ಕೆ ಘರ್ ಪರ್ ಹೈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು जो कि जाना चाहते थे वृंदावन. वृंदावन गए थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन दो महीने तक ही रुके वहां. और दो महीने में उन्होंने पूरा वृंदावन सारे वनों का भ्रमण किया, सारी लीला स्थलियों को देखा. यहां तक कि जो नंदग्राम में जो डीटीज हैं उसमें कृष्ण और बलराम दोनों क्या हैं, श्याम वर्ण के हैं, काले रंग के हैं. तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां गए तो कृष्ण प्रेम में तो हमेशा विहल रहते थे, उन्मादित रहते थे. तो कुछ गोचर करने वाले लोगों से पूछा कि कहां पर हैं यहां कृष्ण. तो उन्होंने नंदग्राम में ऊपर की ओर इंगित किया कि वहां कुछ विग्रह हैं. तो वो गए ऊपर देखने, तो वहां पर जो है कौन कौन से विग्रह मिले, नंद महाराज के भी हैं, यशोदा जी के भी हैं और कृष्ण और बलराम. कृष्ण और बलराम दोनों ही सामने हैं. तो चार डीटीज का दर्शन होता है हमें नंदग्राम में ऊपर जाकर. तो इस प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु जो है प्रेम उन्मादित थे और वृंदावन भी जाना चाहते थे, लेकिन वृंदावन गए दो महीने के लिए और ये सब लीला स्थलियों का जो है उन्होंने देखा. राधा कुंड और श्याम कुंड भी जो है चैतन्य महाप्रभु ने ही देखा था. जो खेत थे उनमें कुछ जल का कुछ कुंड थे दो, तो वहां पर जाके चैतन्य महाप्रभु भावविभोर हो गए और नृत्य करने लगे, लोटपोट होने लगे. तो बताया कि राधा कुंड और श्याम कुंड है. तो चैतन्य महाप्रभु ने इसकी खोज करी. बाकी अन्य गोस्वामियों को भी कहा कि आप जो है वृंदावन के और लीला स्थलियों को ढूंढो, प्रकट करो और ग्रंथों को लिखो, वैष्णव ग्रंथों को. तो इस प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु जाते थे. लेकिन वृंदावन इस बार जब आ रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु को भ्रमित कर दिया गया उनके पार्षदों के द्वारा और उन्हें गंगा नदी को ही बता दिया कि यही यमुना है. और जैसे ही देखा उन्होंने कि अरे यमुना आ गई, तो छलांग लगा दी यमुना नदी में और स्नान करने लगे. अचानक देखा यमुना नदी में अद्वैत आचार्य बोट में आ रहे हैं दूसरी साइड से. कहते अरे ये यमुना नदी में अद्वैत आचार्य यहां क्या कर रहे हैं. अद्वैत आचार्य के घर तो शांतिपुर में है नदिया, है ना. तो कहते तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम वृंदावन में यमुना में क्या कर रहे हो. कहते आप आओ बैठो, मैं आपको लेके चलता हूं. फिर लेकर गए उनको वहां पर. बड़े परेशान हुए, कहे तुमने झूठ बोला मेरे साथ. इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक लीला में जब साउथ इंडिया के लिए भ्रमण के लिए जाना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा मैं किसी को भी साथ नहीं लेके जाऊंगा। कहते नहीं किसी को साथ ले जाना चाहिए, कहते मैं किसी को साथ नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आप लोग जो हैं मेरे साथ हमेशा गड़बड़ करते हो। तुम लोगों ने क्या करा, गंगा नदी को यमुना नदी बता दिया और मुझे कहा कि यही वृंदावन है। तो इस प्रकार इवन नित्यानंद जी को तो वैसे भी साथ नहीं ले जाऊंगा क्योंकि इन्होंने क्या करा था, मेरा संन्यास का दंड भी तोड़ दिया था इन्होंने, टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तो तुम लोग जो हो मेरे साथ चलने लायक नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु यहां पर उनको भक्तों को तो इस प्रकार बोलते हैं लेकिन उनका एक अलग सा प्रेम है उनके साथ, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं लेकिन चाहते थे कि मैं अकेला ही जाऊं। इसलिए फिर जो है अकेले जाने के सोचे, एक कारण भक्त गए थे साथ में उनके। तो इस प्रकार भ्रमण करते थे। तो यहां पर भी अब जो अद्वैत आचार्य अपने घर ले आए चैतन्य महाप्रभु को, तो वो लीला चल रही है जब उन्होंने खाने पर बुलाया चैतन्य महाप्रभु कि आइए फीस्ट आपके लिए महाफीस्ट का आयोजन किया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाई इतना सारा प्रसाद, इतनी वैरायटीज का प्रसाद और इतनी क्वांटिटी में हम जैसे सन्यासियों को शोभा नहीं देता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में तो आए थे साथ ही साथ वो जो है इस प्रकार वर्ण आश्रम धर्म का भी जो है सन्यास आश्रम का भी पालन कर रहे थे और आचरण के द्वारा दिखाना चाह रहे थे कि सन्यास आश्रम में व्यक्ति को किस प्रकार रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं इतना नहीं ले पाऊंगा। साथ में नित्यानंद जी भी चले गए थे ना जी, उनको भी बुलाया गया था। तो उनके बीच में बड़ी सुंदर जो है चर्चा हुई जो हम लोग पिछले एक दो हफ्ते से सुन रहे हैं। तो हम लोगों ने लगभग पिछले श्लोक में हम लोग किया था, बहुत न चैल तुम छाड़ नाचन मुकुंद हरिदास लैया करई भोजन। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को कह रहे हैं कि तुमने हमारी सेवा तो कर ली है ना, तुमने मुझे जो है तो अपने घर ले आए, ऊपर से कहा कि ये खाओ, इतने सारे फीस्ट बनाई, कहा कि आप ये भी इसका भी सेवन करो, जबकि सन्यासी लोग इतना नहीं खाते, आप फिर भी इतना कुछ दे रहे हैं। और आपने कहा कि चलो अब लेट जाओ, तो अच्छे अच्छे बेडिंग हमको दी, बड़ी सॉफ्ट बेडिंग। उसके बाद आपने हमारे शरीरों पे क्या लगाया, चंदन लगाया, सुगंधित चंदन, केसर इत्यादि ना। लेकिन ये चंदन लगाने की प्रथा हमेशा से रही है। भगवान को जो भक्त लोग प्रेम वश कुछ ऑफर करना चाहते हैं तो चंदन लगाते थे। जैसे कुब्जा ने भी जो है जब कृष्ण ने एंटर किया कहां पर, मथुरा में, तो हाथ में चंदन था, किसके लिए ले जा रही थी, कंस के लिए ले जा रही थी, राजाओं इत्यादि को लगता था। तो उन्होंने कहा नहीं, कंस इसका जो है सही उम्मीदवार नहीं है, इस समय तो कृष्ण उम्मीदवार है। तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि ये चंदन किसके लिए जा रहा है, किसके लिए बना था, किसको लगाना था, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे सजा हो जाएगी, नहीं। जब कृष्ण को देखा तो प्रेमवश उन्होंने कहा कि ये चंदन मैं आपको लगाना चाहती हूं और भगवान ने अलाउ किया है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि ओह आप लगाओगे चंदन। चंदन लगाने के लिए सुंदर युवतियों को होना चाहिए ना? तो भगवान ने क्या करा, उसके भाव से, उसके प्रेम से बंध कर स्वीकार किया चंदन लगाना और चंदन लगवाया अपने पर। और उसका फल क्या हुआ, भगवान ने उसकी सर्जरी कर दी है ना सीधा कर दी, क्योंकि वो कुब्जा जो थी उनको कुब निकला हुआ था और कुरूप भी थी, लेकिन भगवान ने क्या किया, अपने पैर से कुब्जा के पैरों पर पैर रखा और अपने हाथों से उसकी ठोड़ी पे हाथ रखा, जो स्पाइनल कॉर्ड है मुझे ऐसे बैंड थे उसको करके सीधा कर दिया। हाँ जी, तो उनको सीधा कर दिया। मैं एक डॉक्टर के पास गया था, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, जो मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई थी, तो उस डॉक्टर के पास गया था अपने एक्सरे दिखाने के लिए। तो मैंने वहां पर देखा, उसमें लिखा था कि संसार के सबसे पहले है ना ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो है, सर्जन जो थे वो कौन थे, भगवान कृष्ण थे। हमारे सृष्टि में जो अभी जितने भी डॉक्टर बन रहे हैं, भगवान ने केवल बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी वो स्क्रूज टाइट किए, बिना किसी प्लास्टर के, बिना किसी पेन किलर मेडिसिन के, उस कुब्जा को बिल्कुल सीधा कर दिया। और जैसे हाथ लगा उसको सीधा किया और किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी कुब्जा को कि चलो मैं दो घंटे लगाया हूं, नहीं, सुंदर हो गई एकदम, जिस प्रकार की मतलब अप्सरा जैसे होती हैं उतनी सुंदर भी होती है। तो भगवान को देखकर वो उसका प्रेम देखकर भगवान ने उसको ये ऑफर किया सब कुछ। तो इस प्रकार जो है भगवान ने उसको हेल्प भी किया। तो यहां पर जो है अब चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी जो लीला चल रही है उसमें उन्होंने कहा कि देखो आप हम लोगों को इतना सर्व कर चुके हो, चंदन भी लगा दिया, ऊपर से बैठने की जगह दी, इतना खाने पीने के लिए दिया, खाने के बाद कुछ अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर आइटम भी दिए हमें, है ना, जैसे पानी देते मतलब मिष्ठान चीजें। तो कहते हैं आपने मुझे खूब नचा लिया, क्योंकि भक्तों भक्त क्या है, भगवान जो है भक्तों के पराधीन अर्थात उनके अधीन रहते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य भी यहां पर एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि वो महाविष्णु के अवतार हैं और सदाशिव के अवतार हैं, कंबाइन फॉर्म ऑफ सदाशिव एंड महाविष्णु। तो फिर भी यहां भक्त के रूप में आए हैं तो अपने प्रेम को इस प्रकार जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा तुमने मुझे बहुत नचा लिया, अभी क्या है तुम बैठ जाओ, अब प्रसाद लो आप भी, है ना। तो भक्त लोग को भगवान ध्यान रखते हैं और उन्होंने उनको कहा भैया प्रसाद लो हरिदास और मुकुंद के साथ। तो अभी उन्होंने प्रसाद देना शुरू किया, फिर बोला तबे ता आचार्य संगे लन दुई जन करिला इच्छाए भोजन ये आछिला मन। तत्पश्चात अद्वैत आचार्य ने मुकुंद तथा हरिदास के साथ प्रसाद ग्रहण किया और उन तीनों ने भरपेट इच्छा अनुसार भोजन किया, खूब कहते थे दबा के खाए। एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि भगवान को खिला दिया, अभी हम संतुष्टि प्राप्त होती है भक्तों को। जैसे गृहणियां जब घर में भोजन बनाती हैं तो जब वो सबको खिला ले, अपने हस्बैंड को खिला दे, बच्चों को खिला दे, उसके बाद अगर कई बार सेवन करती है तो उसको एक अलग से संतुष्टि प्राप्त होती है। पहले शायद अभी भी कई परिवारों में होगा कि स्त्रियां जो हैं जो भी बनाती हैं भोग लगाने के बाद पहले अपने पति देव को खिलाती है, उससे पहले नहीं खाती है ना। तो सुना आपने, देखा भी है? अच्छा शुक्र है कहीं होता है भी। तो और बच्चों को सेटिस्फाई करने के बाद उसके बाद और क्या होता था, इतना सेक्रीफाइस वो होता था उनका नेचर कि मान लीजिए अगर चपात प्रसाद कम भी है तो भी उनका क्या उद्देश्य होता था कि पहले हस्बैंड को पूरा खिलाया जाए, बच्चों को पूरा खिलाया जाए। अच्छा इनको पता भी नहीं होता था कि कितना बचा है, कितना बना है, कितना रह गया, पर उनकी माता की क्या इच्छा होती थी कि बच्चों को पूरा भोजन दिया जाए और अंत में जो बच जाए। बर्तनों की आवाज आती है ना, फिकर है कि एकदम सारा कुछ, फिर जो बचा उसको खाना। तो ये धर्म होता था स्त्री का। अभी क्या होता है कि अभी तो खा पी के व्यक्ति डगार मार के टीवी के सामने बैठा और पति आ रहे थके हारे कि भाई कुछ है खाने को कहते हैं उधर पड़ा है गर्म कर लो और खा लो, मेरे पास टाइम नहीं है, ये टाइम आपका आने का तो इस प्रकार जो है वो फैमिलीज का जो रिलेशन है, फैमिलीज का जो कल्चर है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। लेकिन वैष्णव सदाचार में हमने देखा है कई भक्तों को करते हुए, इस तरह जब हम लोग कई बार गृहस्था भक्तों के साथ होते हैं कहीं प्रोग्राम इत्यादि में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर माताएं जो हैं उनके आगे प्लेट लग जाती है, लेकिन वो तब तक इंतजार करती है जब तक उनके पति भी बाहर से वहां से आना जाए। भक्त लोग बैठे हैं, सब लोग खा रहे हैं, बट एक माता जी नहीं कर रही है, मैंने देखा चैंटिंग कर रही है। तो क्यों रुकी हुई है कि उनके हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो उन्होंने जब शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने शुरू किया। तो ये परंपराएं जो लुप्त होती सी जा रही हैं, छिन्न भिन्न होती जा रही हैं, जिस प्रकार भगवान को दोबारा गीता का ज्ञान देना पड़ा उसी प्रकार जो है अभी दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना के संघ के द्वारा कुछ संस्कारों को फिर से जो है लोग अपना रहे हैं। अपनाना भी चाहिए, नहीं तो ये प्रथाएं जब खत्म हो जाएंगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। और इन्हीं से जो है एक वातावरण बनता है परिवार में, लविंग एक्सचेंजेस, लविंग रिलेशनशिप बनती है, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट बनती है। अगर व्यक्ति हर व्यक्ति सेल्फिश हो जाएगा, हस्बैंड सेल्फिश है, वाइफ सेल्फिश है, बच्चे सेल्फिश है, तो प्रेम खत्म हो जाएगा। जब लोग साथ रहते हैं तो उनको एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, देना चाहिए, दूसरे को आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। जैसे एक मैसेज आया था उसमें लिखा था कि एक बार एक जीव था समुद्र के किनारे एक, तो वो जो है समुद्र से बाहर निकला तो चलता रहा, तो अपने पैरों के निशान को देखकर जो है बड़ा अच्छा फील कर रहा था, प्राउडली फील कर रहा था, देखो मेरे सुंदर सुंदर पैर है, चलते लंबा जा रहा था। उसी समय अचानक एक लहर आती है और सारे निशानों को मिटा देती है। सारे निशानों को मिटाने से वो जो जीव था उसने समुद्र से कंप्लेन करी कि ये तुम मेरे कैसे दोस्त हो, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, आज तुमने देखो मैं इतना खुश था, इतना सब कुछ ठीक चल रहा था, तुमने मेरे पैरों के मेरे फुटप्रिंट्स मिटा दिए आपने, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया तुमने, ठीक है ना। कोसना शुरू कर देते हैं लोग, बोलना शुरू कर देते हैं। तो समुद्र ने कहा देखो ऐसा था कि जब मैंने देखा कि तुम इस प्रकार खुश हो और इस प्रकार चल रहे हो तो मैंने देखा कि एक शिकारी आ रहा है, उन्हीं फुटप्रिंट्स को देखता हुआ कि ये जीव कहां है, उसको मारूं और ले जाऊं, तो इसलिए मैंने लहर का प्रयोग किया ताकि वो फुटप्रिंट्स मिट जाएं और वो अलग हो जाए। तो रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या ये जो कल्चर है ये होता है देने का, कि हम लोग किस प्रकार अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से इनका प्रयोग करें, अपनी वाणी का प्रयोग करें, अपने जो साथ रहने वाले लोग हैं उनकी मदद के लिए। और कई बार जब मदद बताई नहीं जाती या लोग पूछते नहीं, जब रिलेशनशिप अच्छे हो जाते तो मालूम होता है जो कि ये अच्छा किया है, लेकिन कई बार हम लोग मिसअंडरस्टैंड करके नुकसान भी करते हैं रिलेशनशिप में। तो यहां पर जो है कहा कि भरपेट प्रसाद पाया और अरे शांति पूरे लोक शुनि प्रभुर आगमन देखिते आईला लोक प्रभुर चरण। जब शांतिपुर के लोगों ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु वहां ठहरे हैं तो वे तुरंत ही उनके चरण कमलों का दर्शन करने आए। जब हम लोग मायापुर जाते हैं तो पहले शांतिपुर दिखता है अद्वैत आचार्य जी का घर, जहां पर आज भी इस्कॉन के द्वारा साल में एक बार गौर पूर्णिमा से पहले दो चार दिन पहले एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, शांतिपुर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। उस दिन लगभग 40-50 हजार लोग अलग अलग गांवों से उस शांतिपुर अद्वैत आचार्य जी के घर के पास इकट्ठे होते और वहां पर इस्कॉन के द्वारा लगभग सब लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में खिचड़ी प्रसाद बांटा जाता है। हम में से भक्त लोग तो मंदिर के गए हैं, आप लोगों में से कितने लोग गए शांतिपुर फेस्टिवल देखा जिसने? कुछ लोग हैं। शांतिपुर फेस्टिवल में आप अगर देखोगे खिचड़ी जो बनाते हैं वहां के पतीले बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब कितने बड़े होते हैं कि मतलब 4-6 लोग उस पतीले में तकिए लगा के सो सकते हैं, इतना बड़ा पतीला होता है मतलब, और उसके अंदर खिचड़ी बनाई जाती है। एक पतीला नहीं होता ऐसा, कई पतीले होते हैं, और फिर पतीले पलटे कहां जाते हैं, बड़ी बड़ी हौदियां बनाई होती हैं, ठीक है ना, 6x8x8 की बड़ी बड़ी हौदियां, उसमें खिचड़ी पलटते हैं और उसमें से उसकी निकासी के लिए एक छोटा सा छेद भी बनाया होता है। और आप देखते होंगे ना मिस्त्री लोगों के पास वो होता है मिट्टी फेंकने वाला, क्या होता है वो बोलते हैं फावड़ा, तो ऐसे वाला होता है बेलचा, तो बेलचा होता है उनके पास, तो वो ना उसके मुंह पर लगा के रखते हैं, कहां पर, जो छेद है, और नीचे रखी होती है बाल्टियां, तो लंबी में बाल्टियां होती हैं, तो जैसे वो हटाते हैं बेलचा तो खिचड़ी जैसे निकलती है पानी के फ्लो की तरह, बाल्टी भरी जाती है, फिर दूसरी बाल्टी लगाई जाती है, फिर ऊपर से बंद कर देते हैं, फिर करते हैं ऐसे करते करते सारी बकेट्स को भरते हैं, और लगभग 50-40 भक्त लोग दोनों साइड में खड़े होते हैं उन बकेट्स को उठा के आगे देने के लिए, आगे देते रहते हैं ऐसे पकड़ पकड़ के, खाली एक तरफ से आ रही है भरती हुई दूसरी तरफ से जा रही है, और भक्त लोग पूरे इंटरनेशनल डिवोटीज होते हैं, रशियन, कैनेडियन, अमेरिकन, चाइनीज, इंडियंस, सब लोग बाल्टियां पकड़ते हैं और लंबी लंबी कतारों में लोग बैठे होते हैं वहां पर प्रसाद खाने के लिए, तो भर भर के बाल्टियों में डालते हैं, खिलाते रहते हैं खूब, हरि बोल हरे कृष्णा, हरि बोल हरे कृष्णा चलता है खूब, और उसके बाद जो है लोग खूब इंजॉय करते हैं प्रसाद बांटते हुए, एक बहुत सुंदर कल्चर जो है। तो ये वो शांतिपुर है जो अद्वैत आचार्य जी का घर है जहां पर, और इतनी गर्म खिचड़ी होती है कि किसी के हाथ पैर पर गिर जाए तो उसको कई दिन तक याद आता है शांतिपुर। तो उसके बाद कह रहे हैं फेरी फेरी कभु प्रभु धरे न चरण, नहीं सॉरी, फिर कह रहे हरि हरि बोले बले लोक आनंदित न चमत्कार पायला प्रभु सौंदर्य देखी न। सारे लोग अत्यंत हर्षित होकर जोर जोर से भगवान का नाम हरि 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 उच्चारण करने लगे। वास्तव में वे भगवान का सौंदर्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। तो गौरांग महाप्रभु का दर्शन किया कई लोगों ने वहां पर, और गौरांग महाप्रभु का दर्शन किस रूप में कर रहे हैं, संन्यास जो ले रखा है चैतन्य महाप्रभु ने और सर का मुंडन हो रखा है, तो उस रूप को देखकर हरि हरि करके आश्चर्यचकित हो रहे। गौर देह कांति सूर्य जिनिया उज्ज्वल अरुण वस्त्र कांति ताहे करे झलमल। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के गोरे शरीर तथा उनकी उज्ज्वल कांति को देखा जो सूर्य के तेज को भी परास्त करने वाली थी। इससे भी बढ़ चढ़कर उन्हें केसरिया वस्त्रों का सौंदर्य था जो उनके शरीर पर झलमला रहा था। ऐसा या लोक हर्ष नहीं समाधान लोके रसन ते दिन हेला अवसान। लोग बड़े ही हर्ष के साथ आते और जाते थे, इसकी कोई गिनती ना थी कि सूर्य अस्त तक कितने लोग वहां पर एकत्र हो चुके थे और दर्शन कर चुके थे। संध्या ते आचार्य आरंभिला संकीर्तन आचार्य नाचे न प्रभु करे न दर्शन। शाम होते ही अद्वैत आचार्य ने सामूहिक कीर्तन प्रारंभ किया। वे नाचने लगे और महाप्रभु उनका यह नृत्य देखने लगे। नित्यानंद गोसाई ने बोले आचार्य धनी न हरिदास पाछे नाचे हर्षित हन। जब अद्वैत आचार्य नाचने लगे तो नित्यानंद प्रभु उनके पीछे पीछे नाचने लगे। हरिदास ठाकुर भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे नाचने लगे। तो जैसे जब कीर्तन में कोई देखते हैं कोई उत्साहित भक्त है तो उसको नृत्य कर देख दूसरा भी शुरू हो जाता है कि ठीक है अभी नाच लेते हैं, फिर तीसरा भी शुरू हो जाता है। इसी प्रकार यहां पर भी जो है एक दूसरे के उत्साह को देखकर हर व्यक्ति उत्साहित हो रहा है। की कहे रे साखी अजुज आनंद और चिर दिने माधव मंदिर मोर। अद्वैत आचार्य ने कहा मित्रों मैं क्या कहूं, आज मुझे सर्वोच्च दिव्य आनंद प्राप्त हुआ है। अनेकों अनेकों दिनों के बाद भगवान कृष्ण मेरे घर आए हैं। बताइए अद्वैत आचार्य जी हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे घर आए हैं आज। यहां पर रूपा जी तात्पर्य में एक विशेष बात बता रहे हैं इस माधव शब्द के बारे में। यह विद्यापति द्वारा रचित गीत है, उसमें से लिया गया है। कभी कभी माधव शब्द से माधवेन्द्रपुरी अर्थ निकाला जाता है। अद्वैत आचार्य शिष्य थे माधवेन्द्रपुरी के, इसलिए कुछ लोग माधव शब्द का जो उनके मुंह से निकला है का प्रयोग होने से यह सोचते हैं कि यह माधवेन्द्रपुरी के लिए आया है, किंतु तथ्य यह नहीं है। यह गीत मथुरा में कृष्ण की अनुपस्थिति में राधा रानी से कृष्ण के विरह की स्मृति दिलाने के लिए रचा गया था। जब श्री कृष्ण लौट आए तो यह गीत श्रीमती राधा रानी के द्वारा गाया गया था। यह मथुरा विरह के नाम से विख्यात है। तो यहां पर माधव शब्द को दूसरा लगे। ए पद गाओ याया हर्ष कर नर्तन स्वेद कंप फूल काशु ओंकार गर्जनम। अद्वैत आचार्य संकीर्तन टोली का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने इस श्लोक को बड़े हर्ष से गाया। भाव मह अश्रु कंप कंपी रोमांच अश्रु तथा कभी कभी गर्जन और हुंकार का प्राकट्य हो रहा था। फिरी फिरी कभु प्रभु धरे न चरण चरण धरिया प्रभु रे बले न वचन। नाचते हुए अद्वैत आचार्य कभी कभी घूम घूम जाते और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लेते, फिर भी उनसे इस प्रकार बोलते। अनेक दिन तुम्हें मोरे बड़ाई ला भांडिया धरते पनाछी इवे राखी बा बांधिया। कह रहे हैं कि श्री द्वैत आचार्य कहने लगे कि आप बहुत दिनों तक बहकाकर मुझसे भागते रहे, अब आप मेरे घर आए हैं और मैं आपको बांध कर रखूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा भगवान आपको। अब मेरे घर फंस गए हो, किसी तरह खिला भी दिया आपको, सब कुछ कर दिया। ये तबली आचार्य आनंद करे न नर्तन प्रहर रात्रि का आचार केला संकीर्तन। तो इस प्रकार बता रहे कि इस तरह कहकर उस रात को अद्वैत आचार्य ने बड़े ही आनंद के साथ 3 घंटे संकीर्तन किया और सारे समय नाचते रहे। प्रेम रे उत्कंठा प्रभु नहीं कृष्ण संग वीरा है बाड़ीला प्रेम ज्वाला रे तरंग। जब अद्वैत आचार्य इस प्रकार नाच रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के भावमय प्रेम की अनुभूति हुई और विरह के कारण प्रेम की लहरें लहरें और ज्वालाएं तीव्र हो उठी। व्याकुल हन प्रभुर भूमि तपड़िला गोसाई देखिया आचार्य नृत्य संभारिला। भाव से व्याकुल होकर श्री चैतन्य महाप्रभु सहसा जमीन पे आ गिरे, यह देखकर आचार्य ने नाचना बंद कर दिया। अब चैतन्य महाप्रभु को भी भाव के
सिम्टम्स आने लगे। कीर्तन हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने देखा हरिनाम कीर्तन, और अद्वैताचार्य इत्यादि अन्य भक्त भी नाच रहे हैं, और अब जो है चैतन्य महाप्रभु के अंदर भाव की विकृतियां शुरू हो गया ना, और क्या हुआ वो भी प्रेम उत्कंठा के कारण गिर पड़े।
व्याकुल हन प्रभु भूमि ते पड़ीला गोसाई देखिया आचार्य नित्य संभरिला।
नाचना बंद कर दिया प्रभु। अब बता रहे जब मुकुंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव देखा तो वह समझ गए थे कि उनकी भाव शक्ति को बढ़ाने वाले अनेक पद गाने लगे। तो अब उनके भाव क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पे आ गया, तो मुकुंद ने अब मुकुंद बहुत बड़े गायक थे और चैतन्य महाप्रभु के लिए गाते थे, जैसे हम गौर आरती में भी गाते हैं मुकुंद जी का नाम आता है, तो गाने बजाने में बहुत एक्सपर्ट थे लोग। तो अब उन्होंने ऐसे पद गाए जिससे कि उनकी भक्ति का उनके भाव का वर्धन हो। आचार्य उठाए ले प्रभु के करित नर्तन पद सुनी प्रभु अंग नयाए धारण। अद्वैताचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाकर खड़ा किया जिससे वे नाच सकें, किंतु मुकुंद द्वारा गाए जाने वाले पदों को सुनकर महाप्रभु को उनके शारीरिक लक्षणों के कारण पकड़े नहीं रखा जा सका।
अश्रुकंप पुलक स्वेद गद गद वचन क्षण उठे क्षण पड़े क्षण करोदन।
मुश्किल हो गया मुकुंद जी के लिए उनको उठाना, क्योंकि नाना प्रकार के जो है लक्षण प्रकट हो रहे थे, उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, उनका सारा शरीर कांपने लगा, उन्हें रोमांच हो आया, उनका शरीर पसीना हो गया और उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। कभी वे उठ खड़े होते और कभी गिर पड़ते तो कभी चिल्ला उठते,
हा हा प्राण प्रिय सखी की हन की न हे लमोरे कानू प्रेम विषय मोर तानु मन जरे।
मुकुंद गाने लगे, हे मेरे घनिष्ठ मित्र, मेरे साथ क्या क्या नहीं बीता, कृष्ण के प्रेम रूपी विष के प्रभाव से मेरा शरीर तथा मन दोनों बुरी तरह जल रहे हैं।
जब मुकुंद ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु को भाव पीड़ा हो रही है और उनके शरीर का भाव के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो जो कि श्री कृष्ण के विरह से उत्पन्न अनुभूतियां हैं, तो वे कृष्ण मिलन के गीत गाने लगे। अद्वैताचार्य ने भी नाचना बंद कर दिया। रात्रि दिन पोड़े मन सोया स्थिर न पाया यहाँ गेले कानो पांग तहां उड़ी आया।
मेरी भावना इस प्रकार है, मेरा मन रात दिन जलता है और मुझे तनिक भी आराम नहीं मिलता। यदि कोई ऐसा स्थान हो जाए जहां मैं श्री कृष्ण से मिल सकूं तो मैं तुरंत वहां जाकर उड़ जाऊं, तो तुरंत मैं वहां उड़ जाऊं।
ए पद गाये मुकुंद स्वरे सुसुवरे सुनिय प्रभुर चित अनंतरे विद्रे।
मुकुंद ने इस पद को बड़ी ही मीठी वाणी में गाया, किंतु जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को सुना उनका हृदय विदीर्ण हो गया, क्योंकि विरह की बात हो रही है यहां पर। और
निर्वेदा विषाद हर्ष चापल्य गर्व दैन्य प्रभु रसहित युद्ध करे भाव सैन्य।
दिव्य भावों के सारे लक्षण निराशा खिन्नता हर्ष चपलता गर्व तथा दीनता महाप्रभु के अंतर में सैनिकों की तरह लड़ने लगे। सारे के सारे भाव जो है चैतन्य महाप्रभु के हृदय में प्रकट होने लगे और आपस में इस प्रकार जो है सारे के सारे भाव लड़ने लगे। हर्ष का वर्णन भक्ति रसा में सिंधु में हुआ है। हर्ष का अनुभव तब होता है जब किसी को जीवन लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। हमें जो अभी हर्ष होता है तब होता है जब हमारे इंद्रिय तृप्ति का साधन हमें प्राप्त हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु का इंद्रियों का ही नहीं, मन का नहीं, उनके जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्ति। तो यहां पर बता रहे हैं कि ये हर्ष की विधि तब आती है, हर्ष का गुण तब आता है जब किसी को जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाए। फलस्वरूप वह अत्यंत प्रसन्न होता है। हर्ष उपस्थिति होने पर शरीर कांपता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना छूट आता है, अश्रु आ जाते हैं और काम तथा उन्माद का विस्फोट होता है, मुंह सूज जाता है और मनुष्य में जड़ता तथा मुंह प्रकट हो आते हैं। ये लक्षण आपने कभी देखे? कई लोगों को हो जाते हैं आम खाने से। तो कहने का क्या मतलब है कि ये सब रोंगटे खड़े हो जाना, अश्रु निकलना, गिर पड़ना, ये सारे सारे भाव के लक्षण हैं। मुंह सूज जाता है, बताइए। अभी कोई बोलेगा कि इसका मुंह क्यों सूजा हुआ है ना, तो लोग देखते हैं इसको बाहरी दृष्टिकोण से, ये कैसा हो गया, इसकी शक्ल ऐसे क्यों बन गई, गिर क्यों रहा है। इसलिए भक्त लोग ये सारे लक्षण दूसरों के सामने प्रकट ही नहीं करते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी अपने अंतरंग पार्षदों के साथ ही मिलकर शिवासांगन में कीर्तन करते थे, भाव विभोर होते थे या गिरते थे, लौटते थे, पोटते थे, लेकिन उन्हीं भक्तों के बीच में जो उनके अंतरंग पार्षद हैं, न्यू फाइट्स के अब सामने नहीं। इसलिए जब कभी में क्या कहते हैं, उच्च कोटि का भक्त कोई भाव के लक्षण प्रकट करता है तो सामान्य जन जो कि भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो वो भी उसको कॉपी करके अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। क्यों उतारना चाहते हैं? ताकि उनको भी लोग बोलेंगे ये भी शुद्ध भक्त हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जी एक बार बीच बाजार में एक सपेरा जो अपने सांप के लिए बीन बजा रहा था तो हरिदास ठाकुर को लगा, अरे ये तो कृष्ण की बीन है, ये तो कृष्ण का कीर्तन चल रहा है। तो हरिदास ठाकुर जी को क्या हो गया, भाव के लक्षण प्रकट हो गए और वो उच्च उच्च स्वर में हरी 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 बोलने लगे, जंप लगाने लगे, सड़क पर गिर गए और लोटने पोटने लगे। सारे लोग इकट्ठे हो गए कि ये क्या हुआ, लेकिन सब जानते थे कि हरिदास जो क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नाम आचार्य हैं, 300,000 नाम रोज लेते हैं। तो सब उनकी जय करने लगे, जय जय जय। इतने में जो व्यक्ति था, कौन साथ में खड़ा हुआ एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण, उसने कहा, अरे इतना ग्लोरिफिकेशन, इतना मान, इतना सम्मान, मैं तो बचपन से ब्राह्मण कुल में पैदा हूं। तो उसने क्या किया, उसने भी शुरू कर दिया क्या, वो भी हरी हरी करने लगा, वो भी गिरने लगा, वो भी लोटने पोटने लगा धूल मिट्टी में। बीन की आवाज पे सपेरे ने क्या करा, डंडा उठाया और जोर जोर से उसकी पिटाई शुरू कर दी, खूब मारा उसको, भागा, रे बचाओ बचाओ बचाओ, भागने लगा। लेकिन किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया कि हाँ चलो हम इसकी रक्षा करते हैं। क्यों? सब चाहते थे इसकी पिटाई हो, सब जानते थे ये ढोंग कर रहा है, ये नाटक कर रहा है। तो इस प्रकार जो है, जो शुद्ध भक्त हैं उनका क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं उनको कि ओह उन्होंने ऐसे आंसू निकाले, मैं ऐसे आंसू निकालूंगा, ठीक है जी, वो इतना सा गिरे मैं ज्यादा गिर कर दिखाऊंगा, और अच्छा वो इतनी माला करते मैं ज्यादा कहकर दिखाऊंगा, मेरा नाम होगा, मेरा सम्मान होगा। तो नाना प्रकार से कई बार लोग शुद्ध भक्तों को इमिटेट करते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ हम लोगों को भी जो है ग्लोरिफिकेशन मिले। और अल्टीमेटली अगर कोई व्यक्ति एक जीवन में अपने गुरु के नजरों में अच्छा बन गया, अर्थात उनके अकॉर्डिंगली जी गया, तब उसका यह जीवन क्या है, सार्थक है। इस प्रकार हजारों लाखों लोगों में जो जो भक्ति करना चाह रहे हैं उनमें से मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यत् सिद्धे, कुछ लोग हैं जो सिद्धि का प्राप्त कर रहे हैं, सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों में भी वो लोग बहुत महान हैं या वही लोग भक्त कहलाते हैं जिनको सच में गुरु का आश्रय प्राप्त हुआ है। बड़ी सुंदर बात लगी थी माधवानंद प्रभु ने यहीं से बोला था दो तीन दिन पहले जब लेक्चर में आए थे, कि किस प्रकार कई बार लोग जो है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था मोहिनी रूप का, कि किस प्रकार मोहिनी अवतार में भगवान ने जो है असुरों के सामने भाव भंगिकाएं प्रकट करी, उनको उनके सामने नृत्य किया, उनके सामने मतलब तिरछी नजरों से देखा, उनको सारी अपनी अदाएं दिखाई और देवता लोग बेचारे पीछे खड़े हुए थे। देवता वो लोग हैं जो भगवान के नियमों को पालन करते हैं, असुर वो लोग हैं जो भगवान के नियमों को तोड़ते हैं, भक्तों के ऊपर प्रहार करते हैं इत्यादि। तो कोई देख सकता है या देवता कह सकते हैं कि अरे भक्ति हम करते हैं, हम सारे नियमों को पालन करते हैं और भगवान जो है असुरों को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन बाद में नेक्टर किसको दिया उन्होंने, देवताओं के लिए छुपा के रखा था। उसी तरह सकपट कृपा और अकपट कृपा, दो तरह की कृपा होती है गुरु की। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु के हृदय को जानकर, गुरु की शक्तियों को जानकर, गुरु की इंस्ट्रक्शंस को जानकर उस प्रकार अपने जीवन को ढालते हैं। हो सकता है गुरु ऐसे भक्तों को अपने गले न लगाएं, उनको अपने पास ना बुलाएं या उनको भीड़ में डांट भी दें, ठीक है ना, लेकिन गुरु को मालूम है कि ये भक्त पूरी तरह मुझे बिका हुआ है, ये भक्त मन वाणी और कर्म से मेरे मन की, मेरे द्वारा बोले गए बातों को, उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। उसमें गलती हो रही है वो बात अलग है, लेकिन गुरु को पूरा विश्वास होता है ऐसे भक्तों पर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हो सकता है दीक्षित हो सकता है महाराज के बहुत करीब दिखें, हो सकता है कि वो गुरुजन के आसपास ही मंडराते रहें और गुरु उनको बहुत ग्लोरीफाई भी कर दे कई बार, कि भाई इस व्यक्ति ने इतना डिस्ट्रीब्यूशन किया या इस व्यक्ति ने इतना वो किया मंदिर बनाया या इसने इतनी डोनेशन दी या ये बहुत अच्छा वो है, इसका श्रृंगार बहुत अच्छा, कई चीजें बोल दें। तो ये बोलना इसलिए भी होता है ताकि वो व्यक्ति जिस अनर्थ से बंधा हुआ है वो अनर्थ तो नहीं छोड़ेगा अभी, लेकिन उसी को करते करते कभी शुद्ध तो होगा, ठीक है। तो गुरु को केवल कहीं कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, कई ऐसे ढीठ और निकम्मे और जो भी शब्द प्रयोग करें, डिसाइपल्स को भी ज्यादा संरक्षण प्रदान करना पड़ता है गुरु को, ताकि वो शुद्ध हो जाएं। तो इस प्रकार
बताते हैं कि जो लोग गुरु के मन को उनके भाव को जानते हैं और उनके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन से जिनका जीवन है, ऐसे लोग जो हैं गुरु हृदय से ऐसे लोगों को प्रसन्न करते हैं, पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों को ही गुरुजन जो हैं स्टैंप लगाकर भगवान के धाम भेजना चाहेंगे। जिस प्रकार हम लोग अगर फैक्ट्री में हैं, कुछ ऐसी लेबर है जो हमारा पूरी तरह से कहना मानती है और कंपनी का फायदा चाहती है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कंपनी को नोचना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, या उन लोगों से द्वेष करते हैं जो गुरु के संरक्षण में रहते हैं। तो कई बार गुरु को इस प्रकार के नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सबके लिए लागू हो, लेकिन फिर भी गुरु के प्रति, गुरु के हृदय में उन लोगों को विशेष महत्व होता है जो लोग हृदय से क्या कर रहे हैं, गुरु की इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हैं, या उस कंपनी के मालिक की इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हैं। समाज को देखकर, लोग विचार कर हो सकता है केवल गुरु उस प्रकार बिहेव ना करें, लेकिन अंदर से गुरु उसको पसंद करते हैं। और कभी इंक्रीमेंट देना हो, या जो कंपनी का मालिक है या उसको कुछ अच्छा देना हो, तो कुछ भी उसको अच्छे बेनिफिट दे सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं जो केवल डिस्ट्रक्शन के लिए पैदा हुए हैं, या ऐसे लोग नहीं जो लोग केवल गुरु की निंदा या गुरु के इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं करते, ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता। सकपट कृपा होती है गुरु, दिखता लोग की वो एसोसिएशन कर रहे हैं गुरु से, उन्होंने यह कहलवा लिया, वो कहलवा लिया, लेकिन अंत में उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो गुरु का मिशन है, जो गुरु का मूड है, वो है अपने गुरु की इच्छा को पूरा करना। उस इच्छा को पूरा करने के लिए कई बार हमने देखा है गुरु के पास जाते हैं लोग, वो ये भी कहते हैं, गुरुदेव मैं आपको प्रसन्न कर पा रहा हूं ना। तो गुरु क्या बोलेंगे उसको, अगर बोलेंगे नहीं तो क्या, मैंने ये किया था, वो किया था, मैं ये भी कर चुका, मैं वो भी कर चुका, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, तो गुरु को प्रसन्न करना हो तो गुरु से थोड़ी पूछेंगे मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूं कि नहीं, गुरु से पूछ सकते हैं कि हाँ मैं आपकी इच्छाओं या आपकी आज्ञाओं का पालन कर पा रहा हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं, तो मुझे बताएं कि मेरे को और क्या करना है, क्या करना होगा, समय से लायक नहीं। लेकिन जनरली लोग चाहते हैं, दिखाते हैं कि मैं गुरु के बहुत नजदीक हूं, या गुरु से मैंने ये इंस्ट्रक्शन ले ली। कई बार हम स्टैंप लगवाते हैं गुरु से, मैं ये करना चाहता हूं, स्टैंप लगा दो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी कह रहे हैं कि ये तो व्यक्ति को सोचना ही नहीं चाहिए कि वो कभी गुरु को सजेशन दे, तो ये डिसाइबल की क्वालिटी नहीं है। डिसाइबल की क्वालिटी है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करे, इंस्ट्रूमेंट के पास अपनी बुद्धि नहीं होती सोचने की। कैंची अगर सोचे कि मैं काट रही हूं, हाय इसको चोट लगेगी, तो कैंची काट नहीं पाएगी, डॉक्टर के हाथ में जो कैंची, उसका काम ही क्या है, काटना। डॉक्टर सुबह से लगा हुआ उसको काटने में ताकि ऑपरेट कर सके, कैंची कह रही नहीं बड़ा बेचारा दर्द होगी उसको, मैं नहीं काटती, दो घंटे भी दिए काटने में, बताओ। तो इंस्ट्रूमेंट का काम है डॉक्टर के अकॉर्डिंग चले, डिसाइबल्स का काम है कि गुरु के निर्देशानुसार चले, दैट्स ऑल। तो इस प्रकार जो है गुरु का बहुत महत्व होता है। तो ये सब जो लक्षण है प्रकट जो करें, इस इन लक्षणों के बारे में बता रहे हैं, तो जर जर हेला प्रभु भावे र प्रभारे भूमि ते पड़ी ल श्वास नहीं क शरीर। चैतन्य महाप्रभु का सारा शरीर विविध भाव लक्षणों के प्रतिघात से जर्जर होने लगा, फलस्वरूप वे तुरंत ही भूमि पर गिर गए और उनकी सांस रुक सी गई। दुखी अचिंतित हेला यत भक्त गण अचंबित उठे प्रभु करिया गर्जन। महाप्रभु की यह दशा देखकर सारे भक्त अत्यंत चिंतित हो उठे, तभी महाप्रभु सहसा उठ गए और गर्जना करने लगे। बल 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 नच आनंद विहल बुझन नाने भाव तरंग प्रबल। महाप्रभु ने खड़े होकर कहा बोलो बोलो, इस तरह वे आनंद विभोर होकर नाचने लगे, कोई भी उनके इस भाव की प्रबल तरंगों को जान नहीं सका। देखिए अंतरंग पार्षद भी जो उनके साथ है नाच रहे हैं कुछ हैं, वो भी गौरांग महाप्रभु के हृदय को नहीं जान पाते। कौन जान पाते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये भूत स्वयं रूप कदा मयम ददाति सब। रूप गोस्वामी जी जो हैं, जो कि रूप मंजरी हैं श्रीमती राधा रानी कि मेड सर्वेंट है टॉप मोस्ट, वो श्रीमती राधा रानी जी के भाव को जानती है। तो
इस प्रकार हर भक्त महाप्रभु के भाव के लक्षणों को देख सकता कि हाँ भाव आ रहे हैं, लेकिन उनके हृदय की क्या व्यथा है ये कोई नहीं जान सकता। बहुत मुश्किल है।
नित्यानंद संग बोले प्रभु के धारी ना, आचार्य हरिदास बोले पाछे त ना छिया।
नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चलने लगे जिससे वे गिरे नहीं, और अद्वैत आचार्य तथा हरिदास ठाकुर नाचते हुए उनके पीछे पीछे हो लिए।
ए मत प्रहरे कन नाचे प्रभुर रंगे, कभू हर्ष कभु विषाद भावे रथ रंगे।
इस तरह महाप्रभु कम से कम 3 घंटे नाचे, कभी कभी उनमें हर्ष विषाद तथा अन्य भावों की अनेक तरंगे दृष्टिगोचर होती थी।
3 दिन उपवास करी या भोजन, उद्दंड नृत्य ये ते प्रभु हेल परिश्रम।
महाप्रभु 3 दिनों से उपवास कर रहे थे और उनके बाद उन्होंने डटकर भोजन किया, अतएव जब नाचे और कूदे तो उन्हें थोड़ी थकान हो आई।
तबुता न जाने शम प्रेम विष्ट न नित्यानंद प्रभु के राखी लधारिना।
किंतु ईश्वर के प्रेम में मग्न होने के कारण उन्हें अपनी थकान समझ नहीं आई, वे फिर भी नित्यानंद प्रभु के उन्हें पकड़ लिया और उन्हें नाचने से रोका। जितने पार्षद थे साथ में, उनको मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु कभी भी भावावेश आ जाता है तो उनकी रक्षा करने के लिए पकड़ लेते थे उनको, या तो नित्यानंद पकड़ के रखा था कि अब कुछ ना हो उनको। यद्यपि महाप्रभु थके हुए थे किंतु नित्यानंद प्रभु ने उन्हें पकड़ लिया और समय अद्वैत आचार्य कीर्तन बंद कर दिया, तरह तरह की सेवाएं करके महाप्रभु को सुला दिया।
ए मत दशा दिन भोजन कीर्तन एक रूपे करी कर प्रभु रे सेवन।
अद्वैत आचार्य लगातार 10 दिनों तक शाम के समय भोजन और कीर्तन कराते रहे, लगातार 10 दिन तक चलता रहे। इस तरह वे बिना किसी परिवर्तन के महाप्रभु की सेवा करते रहे।
प्रभाते आचार्य रत्न देलाए चढ़ान, भक्तगण संगे आयला शची माता लाना।
अब लीजिए शची माता का आगमन हो रहा है। कल की कथा में जो जीतो मत पूजन दी थी ना, कल परसों प्रातःकाल चंद्रशेखर शची माता को उनके घर से अनेक भक्तों के समेत ले आए और उन्हें एक पालकी में बिठाया।
नदी नगर लोक स्त्री बालक वृद्धा सब लोग आईना हेला संगठ समृद्ध।
सब लोग आ गए। कौन कौन? नदिया जिले से सारे लोग आने लगे, स्त्रियां बालक वृद्ध सम्मिलित हो गए और वहां आए, बड़ी भीड़ हो गई।
इस प्रकार प्रातः नृत्य प्रातः कृतक करी करे नाम संकीर्तन शची माता लेना आयला अद्वैत भवन।
प्रातःकाल शोच आदि कृत्यों से निवृत्त होकर महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तभी शची माता को साथ लिए लोग अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे।
शची माता शची आगे पड़ीला प्रभु दंडवत है नाम कांदी तेला गीला शची कोले उठाईला।
जो ही शची माता वहां प्रकट हुई तो चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों पर दंडवत दंड के समान गिर पड़े। शची माता महाप्रभु को गोद में उठाकर रोने लगी।
क्यों रोने लगी? कि उन्होंने अब देखा चैतन्य महाप्रभु को किस रूप में देखा? संन्यास रूप में। उफ्स।
और कल की कथा परसों की कथा में यही बता रहे थे जीता मित्र प्रभु कि जब शची माता के यहां पर निमाई प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा विश्व रूप जो बड़ा भाई था, हम बड़ा लड़का था, वो अद्वैत आचार्य के द्वारा कथा सुनने इत्यादि के साथ वो घर छोड़कर चला गया। बालक अवस्था में ही उसने घर छोड़ दिया, त्याग दिया, संन्यास ले लिया, और अब हमारा ये दूसरा लड़का जो है ये कहीं ये भी क्या होना हो जाए, संन्यासी ना बन जाए, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम स्कूल नहीं भेजेंगे। तो स्कूल भेजना बंद कर दिया, मतलब स्कूल ही नहीं भेजेंगे इसको, क्योंकि पढ़ लिख गया तो क्या करेगा, ये ग्रंथ तो पढ़ना शुरू कर देगा ही और निकल जाएगा ये भी हमारा तो ये भी संतान चलेगी। तो उनको ठीक है, तो स्कूल भेज जाना बंद कर दिया, भेजना बंद करा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है उल्टे सीधे काम करने लगे, लोगों के घर में शरारतें करते, घरों में ताला बंद कर देते, मतलब कुंडी लगा देते बाहर से, सुबह के टाइम जब टॉयलेट जाना होता था लोग बड़े परेशान होते, तब टॉयलेट बाहर होते थे, अटैच नहीं होते थे। तो इस प्रकार जो है स्थिति में दिक्कतें करने लगे, तो जो भी लोग आते थे शिकायत लेकर वो कहते थे मुझे स्कूल भेजो, मैं सुधर जाऊंगा, तुम स्कूल ही नहीं भेजते मेरे को। तो रोज शिकायतें करते चैतन्य महाप्रभु शिकायतें ले लेके लोग पहुंचते वहां पर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु केवल एक ही तर्क देते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जितने भी लोग आते थे वो कहते हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, लोग चैतन्य महाप्रभु की जो है फेवर करने लग जाते। कितनी अच्छी बात है, देखिए शिकायत लेकर आए लेकिन क्या करे, शची माता को बोलने लगी तुमने इनको स्कूल नहीं भेजा, तुमने पढ़ाया नहीं अपना लड़का, इसलिए ऐसा हो गया। तो यहां पर शची माता प्रभु को गोद में लेकर रोने लगी। दोहार दर्शन दूल्हे हैलवी हल केश न देखिया शची हैलवी कल। एक दूसरे को देखकर दोनों विहल हो उठे। महाप्रभु के शिर को केश विहीन देखकर शची माता अत्यंत विशुद्ध हो उठी। अंग मुच्छे मुख चुंबे करे निरीक्षण देखी ते न पाए अश्रु भरीला नयन। माता माता और बेटे का प्रेम जो है अच्छा लग रहा है। वे महाप्रभु के शरीर का चुम्बन लेने लगी। कभी वे मुख चुमती और ध्यान से उन्हें देखने का प्रयत्न करती, किंतु अश्रुपूरित नेत्र होने से वे उनको ठीक प्रकार से देख भी नहीं पा रही थी। कांदीया कहे न शची बछारे ने मानी विश्व रूप सामना करी हनी ठुराई। यह जानकर कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं उन्होंने संन्यास ले लिया है, शची माता ने रोते हुए महाप्रभु से कहा, मेरे दुलारे निमाई, तुमने बड़े भाई विश्व रूप की तरह क्यों निष्ठुर हो गए हो, उनकी तरह निष्ठुर मत बनो। सन्यासी है न पुन न दिल दर्शन तुम्हें ते छे केले मोर है वे मरण। शची माता कहती हैं, कहती रही कि विश्व रूप ने संन्यास लेने के बाद फिर मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। तुम्हारे बड़े भाई ने जब संन्यास लिया उसके बाद से मुझे दर्शन नहीं दिया उसने। यदि तुम उसी तरह करोगे तो तुम समझ लो कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं तो मर ही जाऊंगी। कांदिया बाले ना प्रभु सुन मोर आई तुम्हारा शरीर मोर की छुनाई। महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे माता सुन लो, यह शरीर आपका है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पलित देह जन्म तोमा हेते कोटि जन्म तोमा ऋण न पारी शोधिते। यह शरीर आपके द्वारा पालित है और यह आपसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं करोड़ों जन्मों में भी इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तो माता के द्वारा दिया गया यह शरीर, पिता के द्वारा दिया गया शरीर, कह रहे कि मैं इसका ऋण नहीं चुका सकता। जानी व न जानी के लिए यद्यपि संन्यास तथापि तुम्हारे कभू नहीं वो उदास। मैंने यह संन्यास जाने या अनजाने में स्वीकार किया है, फिर भी मैं आपसे कभी विमुख नहीं हूंगा हो सकूंगा। तुम यहां कहे अमिताई लही व तुम्हें यही आज्ञा कर सही तारे बही। बिल्कुल सही बात कर दी उन्होंने। हे माता, आप मुझे जहां भी रहने के लिए कहेंगी मैं वहीं रहूंगा और आप जो भी आज्ञा देंगी उसका मैं पालन करूंगा। तो पूरा देखिए, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद भी अपनी माता का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि आप जैसा बोलेंगे जहां मुझे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैं चला गया दूर तो ये ऐसे मर जाएंगे। पिताजी तो पहले खो चुके हैं और अब शची माता हैं, अकेली हैं, उनका कौन ध्यान रखेगा। तो उन्होंने इतना सुंदर ऑफर दिया कि अब जहां भी बोले मैं उस वाले टेंपल में आ जाऊंगा। हमारे यहां पर इस तरह का विशेष एक प्रबंध रहता है कि भक्त लोग जो मंदिर में ज्वाइन करते हैं तो उनको पूरी छूट होती है कि जब मर्जी घर जाएं, उनका घर का ध्यान रखें, माता पिता से बात करें ताकि घर वालों को बुरा ना लगे। नहीं तो इस प्रकार अच्छा है, एक भक्तों को ध्यान रखना चाहिए ताकि घर वाले भी अच्छे भक्त बन सके। हे तबली पुना पुना करे नमस्कार तुष्ट है न आई कोले करे बार बार। यह कहकर महाप्रभु ने अपनी माता को बारंबार नमस्कार किया। षष्ठी माता भी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें बारंबार अपनी गोद में भर लेती। तबे आई लन्ना आचार्य लेना अंभ्यंतर भक्तगण मिलते प्रभु है न सत्वर। तत्पश्चात अद्वैत आचार्य शची माता को घर के भीतर ले आए, ले गए। महाप्रभु तुरंत ही सारे भक्तों से मिलने के लिए तैयार थे। एक एक मिली ला प्रभु सब भक्तगण सबार मुख देखी दृढ़ आलिंगन। ये तो समझ आ गया, सबसे मिले और सबको आलिंगन किया। केश न देखी या भक्त यद्यपि पाए दुख सौंदर्य देखी तब पाए महासुख। जिन भी भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के केश उड़ गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के केश की लीला भी बड़ी सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु के सुनहरे केश थे, बहुत सुंदर। और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो जिस नाई के पास गए बाल कटवाने के लिए, वो काट ही नहीं रहा था बाल, तो मैं काट ही नहीं सकता, इतना सुंदर मुख, इतनी सुंदर आपकी पर्सनैलिटी, इतने सुंदर आपके बाल, और आप मुझे कह रहे हो मैं इनको काट दूं? नहीं, मेरे से नहीं होगा ये अपराध। कहते नहीं मैं काटूंगा, कहते मैं नहीं काटूंगा। तो बड़ी प्रार्थना करके काटना शुरू किया और वो रोते रोते काट रहा, उसके आंसू निकल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के बाल काटता हूं। तो इसी तरह जो लोग अब देखने आए, मिलने आए चैतन्य महाप्रभु से, तो हैरान थे चैतन्य महाप्रभु। पहले दुख हुआ उनके हृदय में, ओह इतने सुंदर बाल, चैतन्य महाप्रभु बाल कटवा लिए। लेकिन फिर महासुख भी हो रहा था उनको किसी चीज का, ये देखकर कि बाल कटवाने के बाद अब चैतन्य महाप्रभु इस रूप में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, सन्यासी वेश में भी। तो उनसे उनको परम सुख की अनुभूति भी हो रही थी। शिवास रमाई विद्यानिधि गदाधर गोदास गंगादास वक्रेश्वर मुरारी शुक्लांबर बुद्धिमंत खान नंदन श्रीधर विजय वासुदेव दामोदर मुकुंद संजय तथा अन्य जितने भी नाम मैं गिना सकता हूं, सभी नवद्वीप के वासी वहां आए और महाप्रभु हंसी खुशी से यहां तथा कृपा की दृष्टि से सबसे मिलते रहे। आनंदे नाचे सबे बले हरि हरि आचार्य मंदिर हेला श्री वैकुंठ पुरी। हर कोई नाच रहा था और हरि के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा था। इस तरह अद्वैत आचार्य को का निवास स्थान भी वैकुंठपुरी में बदल गया। यते लोक आई लमह प्रभु रे के देखी ते नाना ग्राम हेते आर नवद्वीप हेते। नवद्वीप के अतिरिक्त आसपास के अन्य गांवों से भी लोग चैतन्य महाप्रभु को देखने आए। सब कार्य वसदिल भक्ष्य अन्न पान बहु दिन आचार्य गोसान केला समाधान। अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु का दर्शन करने के लिए हर व्यक्ति को आए, हर व्यक्ति को विशेषता नवद्वीप से आए व्यक्तियों को रहने का स्थान दिया और कई दिनों तक सभी प्रकार की खाने की वस्तुएं दी। उन्होंने हर बात का अच्छी तरह से समाधान किया। आचार्य गोसाई भांडर अक्षय अवयय यत द्रव्य व्यय करे तत द्रव्य है जादू। अद्वैत आचार्य के घर की सामग्री अक्षय तथा अटूट थी, खत्म ही नहीं होती थी। वे जितनी भी सामग्री का उपयोग करते उतनी ही सामग्री फिर से प्रकट हुआ थी। तो अब जो कि भक्तों की सेवा कर रहे हैं उनके भंडार कभी खाली नहीं है, भंडार भरते जा रहे हैं। सही दिन हेते शचि करे न रंदन भक्त गण लन प्रभु करे न भोजन। जिस दिन सच्ची माता अद्वैत आचार्य के घर आई वे ही भोजन पकाती थी और श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ भोजन करते थे। इसके बाद मैं अब यहां पर मैं सोच रहा हूं मैं रोक दे, क्योंकि इसके अलावा कुछ परपट के साथ है, आगे इसकी और सुंदर कथाएं होंगी। तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे कि जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने अब जो है उस घर में जो है आए हुए सभी भक्तों को जो सच्ची माता जी के साथ आए आलिंगन किया, उनके प्रसाद की व्यवस्था की आचार्य जी ने, अद्वैत आचार्य जी ने, और इसके अलावा उनके भंडार खाली नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हम 160 पर हम लोग विराम देते हैं। चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। गोप मानंदे एक साथ चाहिए।